दिव्य हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे अध्याय के चर्चा में आज हम ये 19वां भाग है, 19th पार्ट है। पिछले बार जो हम चर्चा करके किया था, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो क्यों होता है व्यक्ति को, तो वैशेषिक सूत्र कहता है अगली इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च विद्या। हमने पिछली बार इनमें से एक की चर्चा की, कैसे इंद्रियों के डिफेक्ट होने से, गड़बड़ी होने से हमारे इग्नोरेंस होती, हमारे अज्ञान होता है। कितने तरह की हमने डिफेक्ट की चर्चाएं की, वस्तु हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसके बावजूद भी हमें नहीं दिखता, अगर वो बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, बहुत नजदीक हो, बहुत दूर हो, बहुत सूक्ष्म हो, या वस्तु और हमारे आंख के बीच में कोई व्यवधान हो, कोई कोई ऑब्स्टेकल हो, दीवार हो, कोई चीज हो, या हमारे इंद्रियों में ही, हमारे सेंस में, हमारे आंखों में, हमारे कान में कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण या तो हमें दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, या जो जैसा है उसको ना देखकर हम कुछ दूसरे ढंग से देखते हैं। जैसे कुछ लोगों को कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम होता है, ब्लाइंडनेस की, तो उनको वो कलर पहचान नहीं पाते, उनको कोई एक ही कलर दिखता है, किसी को रात को नहीं दिखता है या किसी को दिन में नहीं दिखता। इसी तरह सुनने में, स्पर्श करने में, आपको अगर आपको जुखाम है, खांसी है, तो आप समझ नहीं पाते कि कौन सा खुशबू है या बदबू है, या स्वाद क्या है ये भी नहीं पता लगा पाते हैं। कभी कभी आपको बीमारी के कारण आपकी इंद्रियां खराब हो जाती हैं, जिसके कारण हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो, आपके जीभ खराब हो गया हो, दवाइयां खाते हैं रेगुलर और किसी बीमारी से, तो आपको कितने भी खट्टे मीठे स्वाद वाले खाने दें, आपको सारे एक जैसे लगते हैं, फीके लगते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि खाना फीका है, इसका अर्थ है कि इंद्रियों में कोई गड़बड़ी है। तो ये एक तरह की इग्नोरेंस है, अज्ञान है, जो हमारे इंद्रियों के गड़बड़ी के कारण व इंद्रियों की जो लिमिटेशन है उसके कारण व इंद्रियों में जो डिफेक्ट है उसके कारण हमें अज्ञान होता है। दूसरे तरह की जो अज्ञान या इग्नोरेंस है वह संस्कार दोष के कारण होता है। संस्कार दोष का कारण जो हमारे इंद्रियां ठीक है, हमारा माइंड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी हमें गलत फहमियाँ हैं, गलत जानकारियाँ हैं, गलत हैं, वो हमारे संस्कार के कारण। हम किस तरह के बचपन से लेकर अभी तक हमने अपने माइंड को किस तरह बनाया है, हमने इसको किस तरह के ढांचे में बनाया है, मतलब हमारी जो परवरिश हुई है, जिस तरह के माहौल में हम पले बड़े हैं, जिस तरह के सोच को हमने अडॉप्ट किया है अच्छा या बुरे के रूप में, वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या मानना चाहिए, ना मानना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग भी हमारे अंदर बहुत सारे इग्नोरेंस आते हैं उसके कारण। बचपन से अगर हमें जैसे सिखाया जाता है कि अगर आप एक खास तरह के नदी में नहाओगे, एक खास तरह के कोई किताब पढ़ोगे, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। हम पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारा दिमाग भी सही काम करता है, हमारे इंद्रियां भी सही काम कर सकते हैं, हम दुनिया में देख भी सकते हैं, उसके बावजूद भी ये हम मानते हैं कि मैं कितना भी बुरा काम करूं, मैं कुछ डोनेशन दे दूं, किसी खास नदी में डुबकी लगाऊं, खास तरह की किताबें पढ़ूं, खास तरह के व्यक्ति को दान दूं, तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ऐसा आपको डायरेक्ट सेंस में भी कभी नहीं दिखता, परसेप्शन में भी आपको ऐसा कभी दुनिया में ऐसा दिखता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, ना आपकी ना ये ऐसा कोई आपका कॉमन सेंस भी आपको अलाउ करता है मानने के लिए, उसके बावजूद भी हम ऐसा मानते हैं। ये जो इग्नोरेंस है ये आता है हमारे संस्कारों के कारण। कभी कभी माँ बाप बच्चे को संस्कार देने के नाम पर भी इतने सारे इग्नोरेंस उसको भर देते हैं, वो बड़ा होकर वैसे ही इग्नोरेंट होता है जैसे उसके माँ बाप इग्नोरेंट होते हैं, और बड़े गर्व के साथ बोलते हैं हमने अपने बच्चों को कल्चर सिखाया। ये बड़ी सावधानी की जरूरत है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, हजार हजार सालों से हमारे शास्त्रकार ऋषि मुनि इन चीजों के बारे में सोचते थे, जानते थे। जब हमने इनको इग्नोर करने लगे तो फिर हमारे इग्नोरेंस बढ़ने लगे, और हम काले को सफेद और सफेद को काला समझ के बड़े प्राउड फील करने लगे। इसी तरह के दुनिया में जो ईश्वर के बारे में अलग अलग अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्शन हैं, ये क्यों है? अगर ईश्वर है और सभी मानते ईश्वर है, तो उसके लिए अलग क्यों है, इसके लिए मेरे लिए अलग क्यों है, अमेरिका वालों के लिए अलग क्यों है, भारत के लिए अलग क्यों है, अफ्रीका के लिए अलग क्यों है, अरब देश के लिए अलग क्यों है? ऐसा नहीं कि हम इसको समझ नहीं सकते, बस समझते नहीं है। हम जानते हैं कि वो क्या है, क्या होना चाहिए, पर प्रॉब्लम है कि जिस तरह के पीढ़ी दर पीढ़ी हमें जो बताया गया है, हम उस माइंडसेट से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते हैं। वो जो या तो आलस्य के कारण या जो एक जो रिजिडिटी है उसके कारण हम सही जानना चाहते नहीं है। जिस तरह के परवरिश हमारी हुई है, जिस तरह के बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमें उसी पर जमे रहना है, उसके अलावा हमें हिलना नहीं है। उस इग्नोरेंस को हमें एक्सेप्ट नहीं करना, तो और उसी इग्नोरेंस में कभी कभी हम प्राइड बड़े प्राउड भी फील करते हैं। ये इग्नोरेंस क्यों इंसान इस तरह के संस्कार से जो अज्ञान आता है, इसके पीछे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो इस तरह के जो डिफेक्ट ऑफ सेंसेस हो, हमारे इंद्रियों में कोई गड़बड़ी हो, या लिमिटेशन ऑफ सेंसेस हो, इंद्रियों की जो एक सीमा है जिसके कारण हम बहुत सारी चीजें जान नहीं पाते, या जो हमारा जिस तरह के शिक्षा संस्कार हमें मिला है उसके कारण जो इग्नोरेंस हमारे पास है, ये जो इसके कारण जो डिफेक्टेड नॉलेज है, जो ज्ञान जो जो ज्ञान ज्ञान के नाम पर सही नहीं है, जो डिफेक्टिव है, उसी को हम इग्नोरेंस या अज्ञान कहते हैं। उससे जो मुक्त हो, अगर रास्ते में एक रस्सी पड़ी है और अंधेरे में आप जाते हैं, आपको सांप से बड़ा डर लगता है और सांप के बारे में आपको थोड़ी फेविया भी है, तो आप एक टेढ़े मेढ़े रस्सी जो पड़ी हुई है, आप इसको डर देख करके डर जाते हैं और भाग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि रस्सी है। जब आप टर्च डालते हैं या अगले दिन सुबह आकर देखते हैं वो रस्सी पड़ी है, तो आपको ज्ञान होता है। तो रस्सी को रस्सी समझना ज्ञान है, रस्सी को सांप समझना, किसी भी कारण से समझना, ये अज्ञान है। और ज्ञान मतलब जो रियल नॉलेज है, जो जो हर तरह के डिफेक्शन से रहित है, एक्यूरेट है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। अगली स्लाइड। ये जो ये तो समझ में आता है कि हमारे सेंसेस में कोई डिफेक्ट है या लिमिटेशन है जिसके कारण हम नहीं जान पाते। जैसे हम महाकाश के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाते हैं, हम दुनिया में इस संसार के बारे में भी, हमारे बड़े बड़े साइंटिस्टों को भी बहुत बहुत कम नॉलेज है। ये यूनिवर्स का जो बनावट है, ये कैसे बना, क्या हुआ, इसके बारे में जितना भी हमारा साइंस खोजता है, बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। इसका कारण सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो इतना बड़ा है और इतना सूक्ष्म है, उसको जानना मुश्किल है। तो ये तो समझ में आता है जब हमारे इंद्रियों में कोई गड़बड़ी हो या उसकी लिमिटेशन के कारण। पर डेली लाइफ में ज्यादातर जो हमारा अज्ञान होता है, वो अज्ञान हमारे द्वारा बनाया गया होता है। वो क्यों होता है, जिसको हम संस्कार जनित कहते हैं। कि जो पांच तरह के मेंटल हिंड्रेंसेस है, जो पांच तरह के मानसिक बाधाएं हैं जिसके कारण हमारे अज्ञान होता है, उनमें से एक है डिजायर और लस्ट। अत्यधिक लालच और अत्यधिक इच्छा के कारण भी हम इग्नोरेंस को पालते हैं। जैसे हम सबको पता है, जो भी पढ़ा लिखा होता है वो हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में भी, एलिमेंट्री स्कूल में ये पढ़ लेता है कि ये ग्रह नक्षत्र क्या है। इसके बावजूद भी अगर किसको लगता है मेरे जिंदगी में जो गड़बड़ियां हो रही है, वो ग्रहों के कारण हो रहा है, ये जरूरत से ज्यादा लालच के कारण हो रहा है, इसमें इग्नोरेंस का कोई रोल नहीं, ये कॉमन सेंस का कोई रोल नहीं, ये अज्ञान का कारण है। ये अज्ञान हमने पाला है क्योंकि या तो हमारी इच्छा या लालच से, लालच के कारण या दुख के कारण पाला है। डिजायर फॉर साइट्स, साउंड, स्मेल्स, फ्लेवर्स, टचेस एंड थॉट्स इज ऑब्वियस। कुछ पाने के लिए, इंद्रियों को खुश करने के लिए हम जानबूझ के इग्नोरेंट रहना पसंद करते हैं। हो सकता है इग्नोरेंट रहने पर ही मेरा कोई काम बन जाए, इसीलिए हम इग्नोरेंस को पालते हैं। दूसरी चीज है, इग्नोरेंस अराइजेस कॉज्ड बाय एवर्शन एंड इल विल। किसी को द्वेष रखने के लिए द्वेष रखते हैं, या जो दुर्भावना रखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की जो भावना है, उसके कारण भी हम अपनी इग्नोरेंस को पालते हैं या अपने अज्ञान को बढ़ाते हैं। जैसे जो धनी लोग होते हैं या धनी देश होते हैं या धनी समाज होता है, उनके गरीबों के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है। एक बार फ्रांस के एक राष्ट्रपति को किसी ने बताया कि देखिए हमारे देश में, हमारे दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, तो बोले रोटी नहीं तो उनको पिज्जा खिलाया करो। क्योंकि उस व्यक्ति को जिंदगी में ये नहीं पता होता है कि गरीबी क्या है। प्रेसिडेंट बन जाते हैं अपने प्रोफेशनल क्वालिटीज के कारण, उनको लगता है रोटी शायद अवेलेबल नहीं है तो पिज्जा खिलाया करो, उनको बर्गर खिलाया करो। तो इस तरह के माइंडसेट दुनिया में बहुत होती है। जैसे जैसे जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसा रहता है वो हमेशा अपने छोटे लोगों के बारे में हमेशा इग्नोरेंस ही पालता है और उसमें गर्व महसूस करता है। इसी तरह जो इंफीरियरिटी में कॉम्प्लेक्स में बढ़ता है वो बड़े लोग ज्ञानी लोगों के बारे में हमेशा द्वेष और वो दुर्भावना के कारण अज्ञान पालता रहता है। दूसरी चीज है इग्नोरेंस इमर्जेस कॉजेज बाय लेथर्जी एंड लेजीनेस, हमारी जड़ता आलस्य। ज्यादातर हिंदुओं के बारे में ये सत्य है, फैक्ट है कि हिंदुओं का अपने धर्म के बारे में बहुत कम ज्ञान होता है। सुनी सुनाई ज्ञान या अपने पेरेंट्स से पाए हुए ज्ञान के अलावा उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, और इसीलिए ज्यादातर धर्म के नाम पर उपटांग हरकतों में हम व्यस्त रहते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि धर्म के ज्ञान के प्रति हमारा जो आलस्य है, जानने के लिए कौन जानता है, गुजारा तो चल रहा है, नौकरी कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, पैसा आ रहा है, घर बन रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो क्या जरूरत है इस सब जानने की। तो जो चल रहा है चलने दीजिए। अगर कोई कहता है कि कोई नहीं, मोमबत्ती में फूल डालो उसमें इसके आपके नाक खुल जाएगा तो हम डाल, कुछ भी उठपटांग हरकत करने को क्या फर्क पड़ता है। पैसा तो आ रहा है ना, संसार तो चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, मेरी जिंदगी चल रही है। तो ये जो आलस्य है या जड़ता है धर्म को ज्ञान के लिए, इसका फायदा उठाते हैं पंडित लोग, ज्योतिषी लोग, पुरोहित लोग, जो अपने ढंग से हमें अपने धर्म की व्याख्या करके बताते हैं, अपनी सुविधा के अनुकूल बताते हैं, और हम उसी में फंसे रहते हैं और जिंदगी भर इग्नोरेंट बने रहते हैं। अगली है इग्नोरेंस अपीयर्स कॉज्ड बाय रेस्टलेसनेस एंड रिग्रेट। जब हम बहुत ज्यादा चंचल मन वाले हो या बहुत ज्यादा पछतावे वाले मूड में हो तो भी हमारे अंदर बहुत इग्नोरेंस का मौका मिलता है। इसी तरह जब डाउट्स हो या अनसर्टेनिटी हो तो भी हमारे अंदर अज्ञान रहता है। और एक बड़ी अज्ञानता का कारण है कि पुरानी चीजों को जैसी है वैसी रहने देने की जो भावना है, वो जो टेंडेंसी टू लेट गो ऑफ ओल्ड वेज एंड ओल्ड अंडरस्टैंडिंग्स, ये ज्यादातर अज्ञान का भी कारण होता है कि पुराना है, देखो बाप दादा करते आ रहे हैं तो अच्छा ही होगा। देखिए आज से 2000 साल पहले भारत में एक बहुत बड़े कवि हुए, महाकवि कालिदास, 2-2.5 हजार साल पहले। वो लिखते हैं संस्कृत में, बहुत बड़े कवि हुए वो, उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, या आप कह सकते हैं शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। तो वो उन दिनों भी लिखते हैं पुराणमित्येव न साधु सर्वम, कोई चीज पुराना हो जाने से अच्छा होता है ये बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं होता है। नवमिति अनवद्यमिति न, कोई नया होने से बुरा होता है ये भी बुरी बात। और हम सब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं जो कुछ भी हमारे पास है वो सब नए लोगों के द्वारा सोचे गए चीजें हैं, वो साइंस या टेक्नोलॉजी हो, आपके घर की, आपके देश के, जिस देश में जितने यंग रूलर्स आते हैं वो देश इतना अच्छा तरक्की करता है, आप जिस देश में रहते हैं वहां भी पैंतालीस अड़तालीस साल के उम्र के लोग राष्ट्रपति हैं और बनते हैं, और आप जिस देश से बिलोंग करते हैं, आते हैं वहां, कभी कोई 65 साल से ऊपर नीचे वाला कोई बना ही नहीं प्रधानमंत्री, इसीलिए हम दफियान उसमें फंसे पड़े रहते हैं। हमारे भारत में जो नेता होते हैं वो 55-60 साल के यंग माने जाते हैं, क्योंकि वहां कोई 65 साल से ऊपर कोई उससे पहले किसी को चांस ही नहीं मिलता है। उसका कारण है कि हमारा सोच जो है वो पुरानी चीजों को अच्छा मानता है, और इसी के कारण हम बुजुर्ग लोगों को ज्यादा पावर देना पसंद करते हैं, खास करके भारत के लोगों को ये पसंद है। तो जब पर है कि हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ हमें मिला है वो सब सब नए लोगों ने नए सोच के कारण लाए। और सबसे मजेदार बात है, जिस धर्म को हम जिससे हमारा संबंध है, वो धर्म के ज्यादातर जो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस धर्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सब यंग। शंकराचार्य 32 साल के उम्र में उनका देहांत हो गया था, 16 साल की उम्र में उन्होंने जो ग्रंथ लिखना था लिख चुके थे। आपके बच्चे जब टीन एज होते हैं उस उम्र में वो लिख चुके हैं, 32 साल की उम्र में तो देहांत उनका हो गया था। विवेकानंद भी 40 से 50 साल के बीच ही जिंदा रहे, मुझे पक्का याद नहीं 48 या कितने साल में उनका देहांत। स्वामी दयानंद भी 50-55 साल में ही गुजर गए। इस तरह आप देखेंगे जितने हमारे हिंदू धर्म में बड़े बड़े धर्माचार्य हुए जिन्होंने परिवर्तन लाया, नई चीज लाए, वो सब यंग थे। उसके बावजूद भी हमें पुरानी चीजें पसंद है, नए लोगों की बात को हम कम सुनते हैं। जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में नए लोगों की बात सुनी नहीं जाती है, नए विचारों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, यंग लोगों को मौका नहीं मिलता, वो एक डेड सोसाइटी, एक डेड फैमिली, एक डेड नेशन होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहां तक कि हमारे परिवार में भी अगर हम अपने बच्चों का नहीं सुनते, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा दूर तक सोचते हैं, हो सकता है उनकी सोच मोरलिटी का सेंस हमसे ज्यादा हो सकता है हम उनके कंपैरिजन ज्यादा हिपोक्रेट हो, और हमारे बच्चे हमसे ज्यादा लिबरल हो, इसके कारण हमें चुभता है। हम बुरे चीज को छुपा कर करना पसंद करते हैं और हमारे बच्चे दिखा कर करना पसंद करते हैं, यहीं से जनरेशन गैप होता है। हम छुपा करके बड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं, बच्चा कहता है अगर बुरा करना है तो खुलकर क्या छुपाने की क्या जरूरत है। तो ये जो जनरेशन गैप है, हम हिपोक्रेसी को पुण्य मानते हैं और आपका बच्चा हिपोक्रेसी को बुरा मानता है, बुरा हो अच्छा हो या दिखा कर करो, और यहीं से आपके जनरेशन गैप होता है। और हमें लगता है नई पीढ़ी खराब है और हम अच्छे हैं क्योंकि हम पुराने। तो पुराने को पूरी तरह नकारना कोई नहीं कहता, पर पुराने के प्रति जो जिद्दी है कि पुराना अच्छा है, ये हमारे इग्नोरेंस को बढ़ावा देता है। इसके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है। आगे चलते हैं। तो स्वामी जी आगे कुछ और थोड़ा टॉपिक चेंज करके और ये अज्ञान के अलावा कुछ और चीज बात कहना चाहते हैं। तीसरे अध्याय के कंक्लूजन के पर हम जा रहे हैं। Both the teachers and their scholars should avoid all those things that act as hindrances in the way of the acquisition of knowledge, such as the company of the wicked and lascivious people, bad habits such as the use of intoxicants, fornication, early marriage, violation of brahmacharya, aversion of the rulers, parents, and learned men and treatises such as Vedas. Jisko bhi gyan पाना है या ज्ञान देना है, जो कुछ जानना चाहता है, वो जो कुछ बताना चाहता है, उनको कुछ चीजों के बड़ी ध्यान रखना है जिसकी चर्चा स्वामी जी करते हैं। ये आज हम थोड़ी बहुत उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि बचपन से ही बच्चे को जब ज्ञान के मार्ग में जो सबसे ज्यादा बाधाएं होती है, और हम और आप हमारे बच्चे ये सब जानते हैं, क्लास में अगर हम या हमारे बच्चे किसी बुरे दोस्त के चक्कर में पड़ गए तो पढ़ाई लिखाई छूट जाती है। इसीलिए बड़ा सावधानी से हमें देखना पड़ता है कि बच्चे के दोस्त कौन है कौन नहीं है। क्या हम भी आप भी जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे, हमारे माँ बाप भी कंसर्न रखते थे कि अगर बच्चे के दोस्त किस तरह के, क्यों आप गलत संग में पड़ जाते हैं तो आप जैसे ये भी एक तरह के संघ से कारण भी अज्ञान कैसे आता है, कि कोई दोस्त आपको मिल गया बचपन में, इसको कहता है ये क्या रखा है, क्लास में पढ़ना, टीचर का ओबीडियंट बनना, ये सब लल्लू लोग टाइप के बच्चे करते हैं, चलो ये क्लास व्लास में जाना इसको छोड़ो, चलो लाइफ एंजॉय करो, क्लास बंप करो, तो ये इससे आपके हीरोइक नेचर आएगा। तो कुछ बच्चे इस तरह के सुन सुन के फंस जाते हैं और भाग जाते हैं। अब यहाँ तक रहे कि बच्चे ही कुसंग में पढ़ते हैं, बड़े होने तक भी हम कुसंग में रहते हैं। तो ये कुसंग जो है वो और कुछ खराब, कुसंग मतलब जो बैड कंपनी है, ये और कुछ करे ना करे हमारे माइंड को जरूर डाइवर्ट करता है और बुजुर्ग होने तक भी हमें अच्छे या बुरे संग के कारण हमारे दिमाग यूज होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, भारत में एक राजस्थान में एक बाबा हुए, वो खास करके जो छोटे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो झाड़ू पोंछा करने वाले जो हरिजन लोगों के बीच में एक बाबा बने, उनको प्रवचन करते थे, धीरे धीरे वो भगवान भी बने। अब उन्होंने कहा कि देखो ये मेरी एक छड़ी है, ये डंडा है, ये आप ये डंडे को मैं जिस पैसे पर छू लूंगा वो 10 गुना बनेगा। अगर आप पैसे मेरे पास जमा करते हैं 1 महीने के लिए 3 महीने के लिए, तो जितना पैसा आप मुझे देंगे मैं उसका 10 गुना बना कर दूंगा, और आपको मेरे पास वो 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए रखना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में लोगों को देने लगे तो वो भी पैसा देने लगा। अब आजकल तो हर कोई धर्म के नाम पर, क्योंकि श्रद्धा आसानी से लोगों की श्रद्धा हो जाती है, तो बुरे लोग भी बहुत धर्म में आ जाते हैं और उसका परिणाम सबको भोगना पड़ता है। तो ये बात फैली कि भाई 6 महीने में 10 गुना पैसा, 10 times more आपको पैसा मिलता है। तो थोड़े थोड़े लोगों को देने भी लगे, कुछ कुछ लोगों को। अब यकीन नहीं मारेंगे, 5-7 साल के बाद जब बहुत सारे लोगों ने पुलिस में केस किया, 2-4 लोगों ने, तब बात फैली। वो ज्यादातर उसके बिलीवर जो थे वो गरीब थे, नौकर करने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले, रोड साफ करने वाले, मतलब जिनकी रोज की कमाई 5-10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होता था, ऐसे लोगों की कमाई से वो व्यक्ति 20-25 करोड़ रुपए ले गया और लाखों लाखों लोग बर्बाद हो गए। उनके छोटे छोटे घर वो बेच के कोई किराया वो बंधक दे करके या किसी जमीन बेच करके पैसा दिए थे इस लालच में कि हमारे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और वो कहाँ से उनको जानकारियां मिली, उनके दोस्त उनके साथी जो उनको भड़काया कि 1 रुपए को 10 रुपए मिलेगा 6 महीने के अंदर। ये जो संग दोष होता है उसको बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। तो जो जो ज्ञान के मार्ग में गंदी आदतें, गंदे लोगों के साथ दोस्ती, आजकल ये स्थिति कम है जो पहले था स्वामी जी के जमाने में, जिसको आप अर्ली मैरिज कहते हैं, पहले शादी कर लेना, बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। और विद्यार्थी काल में जब आप विद्या लेते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन को रेस्पेक्ट करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और जो शासन है, माँ बाप है, गुरुजन है, जो शास्त्र है व जो ग्रंथ है, उनके प्रति सम्मान भाव रखना ये बड़ी जरूरी है। अगर नहीं रखते हैं तो ये आपके ज्ञान प्राप्ति में बाधक होता है। आगे की देखिए, आगे कहा कि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ये भी हानिकारक होता है। ये तो खैर उन लोगों के लिए कहा जिनको ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा हो, विद्यार्थियों या बड़े हो जिसको नॉलेज प्राप्त कर, पर जनरल लोगों के लिए भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं कि ज्यादा खाना या ज्यादा सोना या गलत समय पर सोना या गलत टाइम पर उठना, ये भी शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। कभी कभी जवानी में हमारे शरीर में क्योंकि इम्यूनेशन कैपेसिटी अच्छी होती है तो हम उसको सह जाते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी सोते हैं, कितने बजे भी उठते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इन सब का परिणाम तब दिखने लगता है जब शरीर उम्र के कारण ढलने लगता है, 40-45 के बाद धीरे धीरे वो सारे जो हमने गलत काम किया था जवानी में वह अभी भी कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें उम्र के घटने के साथ साथ दिखने लगता है। दूसरी चीज है इंडोलेंस इन लर्निंग टीचिंग एंड एग्जामिनिंग और बिंग एग्जामिंग, पढ़ाई में पढ़ाने में परीक्षा लेने में और देने में जो आलस्य करते हैं वो भी कभी ज्ञान नहीं पा सकते। जिसको पढ़ाई में आलस्य हो, जिसको अपने आप को परीक्षा टेस्ट करने में जिसको प्रॉब्लम हो, वो भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और दूसरा है कि ज्ञान को जो व्यक्ति संसार का सबसे अच्छा चीज नहीं मानता, उसके जीवन में भी उन्नति कम होती है, उसका भी इग्नोरेंस हमेशा बना रहता है। जो ज्ञान को सम्मान नहीं देता, देखिए आप जिस चीज को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे उसको पाने के लिए कभी कोशिश नहीं करते। हम अगर धन के पीछे पड़े हैं क्योंकि हम धन का बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं, तभी इसीलिए हम बहुत ज्यादा लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बहुत कम लोग सरस्वती को पूजते हैं क्योंकि हम सोचते हैं सरस्वती सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की पाने का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो जब तक लक्ष्मी मिल जाए फिर सरस्वती की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारे बचपन में हम जानते हैं कि सरस्वती सिर्फ स्कूल में पूजी जाती थी, उसके बाद तो जिंदगी में कोई पूजी नहीं है, पर बुढ़ा होने तक लक्ष्मी जरूर पूजी जाती है। तो ठीक है, लक्ष्मी पूजने में कोई हर्ज नहीं है, पर अगर आप ज्ञान का महत्व को नहीं आंकते हैं तो आप जरूर इग्नोरेंट तो बने रहेंगे, तो आप एक ऐसे सोसाइटी भी बनाएंगे जहां जहां इग्नोरेंस का महत्व ज्यादा हो, ज्ञान का महत्व ज्यादा। जिस चीज को आप रेस्पेक्ट करते हैं उसके लिए आप टाइम निकालते हैं। जो लोग अपने परिवार का सम्मान करते हैं, अपने रिलेशंस का, मतलब जो संबंधों का संबंध करते हैं, वो पैसा कमाने को कम कर देते हैं क्योंकि उनको अपने परिवार के लिए समय देना है, कर देते हैं। जिसको पैसे में सबको ज्यादा महत्व है वो परिवार को इग्नोर करता है, वो रिलेशनशिप को इग्नोर करता है, वो खुद को इग्नोर करता है। तो आप जिस चीज को रेस्पेक्ट करना सीखेंगे, आप उसी को पाने के लिए जरूर आप मेहनत करेंगे। तो जब तक आप इसको अंदर से आपका कन्विक्शन ना हो कि नहीं, ज्ञान संसार में सबसे ऊंचा चीज है अपने को ऊंचा बनाने के लिए, तब तक हम ज्ञान के पीछे पड़ेंगे नहीं। जरूरी नहीं कि एक आदमी 24 घंटे ज्ञान के पीछे पड़े, पर ज्ञान प्राप्ति जीवन भर में एक हमेशा एक साधन बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि ज्ञान के महत्व को हम समझें। दूसरी चीज है रिफ्यूजल ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ, बल, ज्ञान, पराक्रम मतलब हिम्मत, स्वास्थ्य, अपनी जो सुवर्णिति है, जो 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 राज्य है और जो धन, इन सब को बढ़ाना जरूरी है। इसको अगर हम रिफ्यूज करें, अगर हम इसके प्रति डिनायल मूड में रहे कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो भी हम इग्नोरेंट रहेंगे, हम जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। अगली स्लाइड लगाएंगे। Wasting time in the act of seeing and worshipping lifeless statues, stone, wood, etc. in place of the worship of God. दूसरी चीज ignorance का जो फल होता है, ईश्वर को दुनिया में जो भी जो ईश्वर को नहीं मानते वो नहीं मानते, तो different जो नास्तिक हैं। पर problem है कि आस्तिकों का व्यवहार जिस तरह दिखता है उससे नास्तिक होना ज्यादा अच्छा लगता है। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो नास्तिकों ने नहीं की, वो सब आस्तिकों ने की है और सब ईश्वर के नाम पर की है। पूरा यूरोप साफ हो गया, हजार हजार सालों की जो यूरोप की अपनी एक यूनिक कल्चर थी वो कहीं नहीं रहा, बिल्कुल साफ हो गया। अरब का कल्चर साफ हो गया, उस जगह नए नए रिलीजन ले गए। पूरा अफ्रीका बदल गया, भारत में बदलाव जारी है, अमेरिका बदल गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ जो रिलीजियन है एक ईश्वर के नाम पर अपने आप को जबरदस्ती थोपना है। अगर हम ईश्वर को पूजते हैं, हम मानते हैं कि ईश्वर, मैं ईश्वर को मानता हूं, तो हमें ईश्वर को पूजना चाहिए। पर समस्या है कि हम ईश्वर को मानना ऐसे जीभ में बोलते, मुंह में बोलते हैं, पर गले से लेकर अंदर तक हमारे ईश्वर से कम रिलेशन है, ईश्वर से रिलेटेड चीजों से ज्यादा मतलब है। हम पैगंबरों को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हम ईश्वर के कंपैरिजन जो पैगंबर है, जो मैसेंजर है, उनको ज्यादा, उनको ईश्वर मानते हैं। हम पानी, पत्थर, हवा, लकड़ी तक सबको ईश्वर, सबको ईश्वर मानने को तैयार है, सिर्फ ईश्वर को छोड़ करके। तो ये जो एक प्रॉब्लम है कि ईश्वर की पूजा छोड़ करके हम दुनिया के हर तरह के जड़ जड़ वस्तुओं को पूजने लग जाते हैं, ये भी इग्नोरेंस का फल। द अब्सेंस ऑफ वेनरेटिंग द पेरेंट्स, द प्रिसेप्टर, अल्ट्रुइस्टिक टीचर्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अदर ग्रेट मेन, बाय बिलीविंग देम एज द ट्रू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप। या तो आप ईश्वर को पूजिए, और ईश्वर को पूजने के अलावा अगर आपको संसार में किसी को पूजना है, तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहता है पंचदेव, पंचजन, तो पांच तरह के देवताएं होते हैं, उनको पूजो। हमारे माँ बाप, हमारी पूजा की पद्धति में माँ बाप सबसे पीछे रह गए। तो शास्त्र कहता है आपको ईश्वर के अलावा अगर किसी को पूजना है, अपने माँ बाप को पूजो, जिन्होंने ज्ञान दिया है, शिक्षा दी है, उनको पूजो। जो अतिथि, अतिथि का मतलब गेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। आजकल जो हम अतिथि देवो भवस्य का अर्थ निकालते हैं, गेस्ट नहीं, गेस्ट का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, गेस्ट को आज एज ए ह्यूमन बींग यू हैव टू रेस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बींग, जो भी आपके घर में आता है आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो कंसेप्ट नहीं था अतिथि देवो के पीछे। अतिथि का अर्थ था जो प्राचीन काल में जो वानप्रस्थी या सन्यासी अपना परिवार छोड़ करके, अपने परिवार की चिंता छोड़ करके समाज सेवा में लगे रहते थे, समाज को अब बिना कुछ लिए सेवा करते थे, ऐसे लोग क्या करते थे प्राचीन काल में, भिक्षा में गुजारा करते थे। वो अपनी कमाई छोड़ छाड़ कर आए, समाज की सेवा में लगे रहे, और समाज से उसके बदले कुछ लेते नहीं थे, फ्री में सेवा करते थे। उनको जरूरत बहुत कम होती थी खाने पीने कपड़े की, छोटी थोड़ी बहुत, उसके लिए वो अपनाते थे कि जो भी सामने मिल गया, जिसका घर मिल गया, खटाए, भूख लगा तो खाना खिला। इस तरह के लोगों को हम अतिथि कहते हैं। अतिथि का अर्थ होता है जिसका कोई तिथि नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई प्लेस नहीं, कभी भी कोई भी आपके घर आ जाए। क्योंकि ये व्यक्ति समय देकर नहीं आते थे, वो काम काम करते हैं, सामाजिक सेवा में जाते हैं। आज भी आपको देखेंगे बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, सोसाइटीज हैं, जो समाज सेवा में लगा रहता है, लगे रहते हैं। ऐसे लोगों का सत्कार को अतिथि यज्ञ कहा गया था। प्राचीन काल में ऐसे लोगों को खाने के लिए या कुछ लेने के लिए घर पर अचानक आ जाते थे, उसको हम अतिथि कहते थे। आजकल अतिथि यज्ञ करना है तो जो भी सामाजिक सेवा में लगा हुआ है, वो संस्था हो, संगठन हो, या व्यक्ति हो, जो स्वार्थ को ना देख करके संसार के लिए व समाज के लिए सेवा करता है, ऐसे लोगों की सेवा करना, उनका रेस्पेक्ट करना, ये अतिथि अतिथि में आता है। या संसार में जो भी ज्ञानी विद्वान लोग जिनका समाज में कंट्रीब्यूशन, वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आर्ट में हो, क्राफ्ट में हो, रिलीजन में हो, जिनके कारण समाज उन्नति को जाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देना, ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट करना, ये जीवित देवता का पूजा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद, जब उनके जमाने में जब उन्होंने देखा कैसे हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर अलग अलग तरह के हरकतें करते हैं, पर जो जो सिंपल चीजें वो नहीं करते हैं, अपने परिवार का सम्मान नहीं करना, पति पत्नी का सम्मान नहीं करना, गरीब भूखा पड़ा हो कोई बात नहीं, मंदिर में जा करके अगर कोई मंदिर के नीचे बैठा है दान के लिए, तो उसको 54-58 दे देंगे। मंदिर बनाने के लिए हम 5 लाख रुपए डोनेशन देने के लिए तैयार होते हैं, पर एक स्कूल बनाने के लिए हम 5,000 रुपए देने के लिए हमें तैयार नहीं होते हैं। हम हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। स्कूल और हॉस्पिटल जो पब्लिक स्कूल बनाते हैं, ये जो भारत में पब्लिक स्कूल मतलब जो डोनेशन लेकर के पढ़ाते हैं, जो बहुत महंगा पढ़ाते हैं, वहाँ डोनेशन दे सकते हैं, पर एक गरीब लोगों के लिए बच्चे फ्री में पढ़े, फ्री में उनको हॉस्पिटलिटी मिले, इसके लिए पैसा देने को हम तैयार नहीं होते। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद उन दिनों कहा कि देखो नर ही नारायण है, अगर तुम्हें ईश्वर को पूजना है कि तुम्हारे अगल बगल में जो गरीब है, दुखियारे हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा करो, उन्हीं में नारायण को देखना शुरू करो, तो सचमुच तुम्हें नारायण मिलेगा। ये नहीं कि मंदिर में आप पत्थर के सामने तो माथा फोड़ देते हो, अब तुम्हारे सामने कोई गरीब कोई दुखिया रहा तड़प तड़प के मर जाता तुम्हारे दिल नहीं धड़कता। ये कौन सी धर्म भावना है, कौन सा अध्यात्म भावना है? तो अगर हमें ईश्वर के अलावा किसी को पूजना ही है तो हम अपने माँ बाप से लेकर के जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जो समाज सेवा में लगे हैं, जो गरीब हैं दुखिया रहे हैं परेशान हैं, ऐसे लोगों की हम पूजा करें तो हम असली असली ईश्वर की पूजा को सम्मान देते हैं। और एक बात करते हैं, अगला है वर्णाश्रम व्यवस्था को न मान करके दुनिया भर के हिपोक्रेट चीजें को करते रहना, जैसे अलग अलग तरह के तिलक चंदन लगाना, जैसे कोई कोई ये त्रिपुंडक कहते हैं तीन रेखा वाले, ये इधर कभी इधर कभी इधर, आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप हमारे हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे कितने तरह के तिलक, वैसे हर सेक्ट का ये सेक्टेरियन मार्क होता है, हर सेक्ट का अलग अलग चिन्ह होता है और उसके लिए अपनी कहानी पुराणों में भी होता था। वैष्णव कहते थे कि जिसने विष्णुपाद नहीं लगाया ऐसे, ये उसको विष्णुपाद चिन्ह कहते, तो भाई वो जो मरता था तो विष्णु के दूत उसको पैर लगा के हट फेंक देते थे नर्क में। और अगर आपने वो शिव चिन्ह नहीं लगाया त्रिपुंडरक तो शिव के भक्त आपको स्वर्ग जाने नहीं देते थे। तो धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा इनसे हटने लगे हैं इस तरह के विचारों से। तो ये जो अलग अलग अपना जो वर्ण है, जिस तरह के प्रोफेशन को ब्राह्मण है वैश्य है शूद्र है या क्षत्रिय है, जिस तरह के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मेरा वर्ण है, मैं अगर ज्ञान के क्षेत्र में हूँ, पढ़ने पढ़ाने में रुचि रखता हूँ, मैं अगर देने और लेने में रुचि रखता हूँ, यज्ञ करने और कराने में रुचि रखता हूँ, मुझे अगर धन से ज़्यादा ज्ञान प्रिय है तो मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मेरे लिए किसी को प्रोटेक्ट करना में मुझे अच्छा लगता है, मैं फिजिकली फिट हूँ और दूसरों को भी फिजिकली प्रोटेक्ट करता हूँ, या किसी भी तरह के मेरे मुझे पावर रखना पसंद है और वो पावर रखना पसंद है कि मैं पब्लिक को प्रोटेक्ट कर सकूँ, वो आजकल के पॉलिटिकल पावर हो या पहले जो राजा होते थे वो फिजिकल पावर उनके पास होना चाहिए, तो वो क्षत्रिय है। वो आजकल आप आर्मी कहें, पॉलिटिकल ग्रुप कहें, आर्मी कहें, पुलिस कहें, जो भी कहें, वो क्षत्रिय है। या जिसको धन में इंटरेस्ट है, जो धन कमाना चाहता है, धन रखना चाहता है, धन का यूज करना चाहता है, वो वैश्य है। और जिसको पढ़ने ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है, बल में इंटरेस्ट नहीं है, वह हो नहीं रहा है या धन में भी नहीं कमा पाता है, वो सेवा करता है, सर्विस करता है, नौकरी करता है, वो नौकरी जिसको हम शूद्र कहते हैं। देखिए सारे नौकरी करने वाले शूद्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई भी नौकरी करता हो वो शूद्र ही होता है। ये ट्रेडिशनली कि नौकरों को शूद्र कहा जाता है, ऐसा नहीं कि कोई इंजीनियर रहता है तो वो शूद्र नहीं हुआ, अगर नौकरी करता है तो शूद्र है। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, वो इंजीनियरिंग जो इंजीनियर डॉक्टर ये शूद्र कैटेगरी में आते थे, पर इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला जो प्रोफेसर होता था वो ब्राह्मण कहलाता था। आजकल बड़े गर्व मत करिए कि मैं तो शर्मा हूँ, पर अगर नौकरी करते हैं तो आप शूद्र हैं, अगर व्यापार करते हैं तो वैश्य हैं, अगर आप आर्मी पुलिस में या पॉलिटिकल लीडर हैं तो आप क्षत्रिय हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं या पढ़ाते हैं पढ़ते हैं ज्ञान की चर्चा रिसर्च करते हैं तो आप ब्राह्मण। तो जो वर्ण व्यवस्था है या जो आश्रम व्यवस्था है कि आप अपने जीवन के पहले पहले 1/4 टाइम में आप ज्ञान के लिए अपने आप को तैयारी करेंगे, सेकेंड हाफ सेकेंड स्टेज में आप अपने परिवार और खुद के लाइफ को एंजॉय करेंगे सुख भोगेंगे, जो थर्ड स्टेज में आप सामाजिक सेवा में लगे रहेंगे, फोर्थ स्टेज में आप ईश्वर के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे, ये जो एक सिस्टमेटिक वे से हमारे जीवन को बनाया गया था उसको हम मान छोड़ करके अलग अलग तरह के चिन्ह लगा के अलग अलग तरह के माला लगा के हम अपने आप को धार्मिक दिखा के, उसको संस्कृत में कहते हैं बिडाल वैष्णव। तो बिडाल वैष्णव ऐसा है कि कह के बात को खत्म करते हैं, देखिए क्या कहते हैं उसको, बिल्ली बिल्ला था बिल्ला, तो वो जिंदगी भर चूहा खाता रहा खाता रहा, पर बुढ़ा हो गया, अब खाने लायक नहीं रहा, अब वो मेहनत नहीं कर पाता है, दौड़ भाग नहीं कर पाता, तो उसने कहा कि क्या क्या तालाब के पास खड़े होकर के तिलक चंदन लगा के एक पैर में खड़ा होकर के खड़ा हो गया, चुप रहने लगा। तो बहुत दिनों से चुप रहने लगा, चूहा मछली बाकी जो लोग सब आने लगे, भाई क्या हो गया जी? मैंने दीक्षा ले लिया और मैं संन्यास ले लिया और मैं किसी किसी हिंसा नहीं करूंगा, किसी प्राणी को नहीं खाऊंगा, अब मैंने संन्यास ले लिया। वो खड़ा रहा। तो इसीलिए कहते हैं ना, चूहा सौ सौ चूहा खाकर बिल्ली चला हज कर। तो अब जैसे वो चुपचाप शांत खड़े लगा, लोगों को लगा अब ये अहिंसक हो गया, अब ये मारेगा काटेगा नहीं खाएगा नहीं, तो उसके आसपास सब जो भी छोटे छोटे प्राणी घूमने फिरने लगे, जो घूमने घूमने फिरने लगे अकेले जिसको देखा उसको लेकर के खा जाता था, फिर एक टांग पर खड़ा हो रहता था। तो हम सबकी दशा इस तरह की हो गई है, इसी को हम हिपोक्रेसी कहते हैं, पाखंड कहते हैं। धार्मिक चिन्ह लगाने लग करके घूमते हैं पर अंदर धर्म की भावना नहीं होती है। आगे की बात फिर हम आगे करेंगे। यही विराम देते हैं।